તારીખ 22/10/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 212 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર
130 બહુ તીવ્ર રસ આવે ઓટોમેટિક બીજી જગ્યાએ છે તો શક્તિ રોકાતી મન થઈ જાય પછી શું
દરમિયાન તો વાંચન સરળ સરળ લેખકો સ્કૂલ દરમિયાન વાંચન તો
વાંચન માંથી શું છે કે ખ્યાલ આવ્યો સામાન્ય રીતે શું છે કે ધર્મ છે એ રૂઢિનો વિષય છે અને અંધશ્રદ્ધા નો વિષય છે એ મને ખ્યાલ હતો અને અંધશ્રદ્ધાને હું ધિક્કારતો હતો. આઈ વોઝ આઈ ઓલવેઝ હીટિંગ, મને ઘૃણા હતી કે આ જે લોકો મંદિરોને લઈને બેઠા છે અમારા લોકો જે વૈષ્ણવોમાં એ લોકો અંધશ્રદ્ધાનો અનડ્યુ એડવાન્ટેજ લે છે અને લોકોને પાસેથી લૂંટ કરીને પોતે પાના માના કરે છે અને એ લોકોનું બહુ લક્ઝરિયસ લાઈફ હોય છે. ખાલી ડ્રેસ એનો ધાર્મિક હોય છે, બાકી એની પોતાનું ડોમેસ્ટિક લાઈફ બહુ જ લક્ઝરિયસ હોય છે. આ મુખ્યાજી વગેરે તો લગ્ન વગેરે પણ કરે છે એટલે તો એમ લાગતું હતું કે આ તો બધું આમાં તો કઈ એટલે એક જાતની જે સાંપ્રદાયિક ધર્મની પકડ હોય એના બદલે એ ઉલટી વાત હતી. ત્યાં ધિકાર ને ઘૃણા આવતી હતી એટલે એ પકડમાંથી તો છૂટવાનો કાંઈ પ્રશ્ન નહોતો. એ ખાલી ન્યુટ્રલ વાત શું હતી કે આમાં ન્યુટ્રલી જોઉં છું કે શું છે તો મેં કહ્યું કે આ તો રૂઢી કે રિવાજ કે અંધશ્રદ્ધાનો વિષય નથી, આ તો સાયન્સ છે, વિજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાનમાં સુખ દુઃખનો જો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થતો હોય આ તો બહુ મોટી વાત કહેવાય. એ દ્રષ્ટિએ પછી જે સમજાય છે સાયન્ટિફિક વિઝનથી જે સમજાય છે એ વધારે ક્લિયર સમજાય છે અને વધારે સારો સમજાય છે. એટલે એમાં પ્રેક્ટિકલ સાયન્સ તો પ્રેક્ટિકલ સબ્જેક્ટનો પ્રકાર છે આખો, તો તે દ્રષ્ટિએ પછી પ્રેક્ટિકલ સાઈડમાં જવાનો વધારે બી. વાંછા યા ઈચ્છા કે અર્થ મેં કામ શબ્દ પ્રયુક્ત હોતા હૈ તથા પંચેન્દ્રિય વિષય કે અર્થ મેં ભી પ્રયુક્ત હોતા હૈ. કામ શબ્દનો પ્રયોગ શું થાય છે? ઈચ્છા વાંછાને પણ કામ કહેવાય છે. પંચેન્દ્રિય વિષય પ્રતિ જે જીવ કે પરિણામ હૈ ઉનકો ભી કામ શબ્દ છે બોલા જાતા હૈ. અનન્ય અર્થાત જિસકે જૈસા દૂસરા નહીં સર્વોત્કૃષ્ટ, અનન્ય શબ્દ કા ક્યા અર્થ હૈ? અનન્ય માને જિસકે જૈસા દૂસરા નહીં, અન્ય નહીં ઉસકો અનન્ય, ઇસકે બરાબર કા કોઈ નહીં ઉસકો અનન્ય કહેતા હૈ, યાની સર્વોત્કૃષ્ટ. અનન્ય ભક્તિ ભાવ, અનન્ય મેં અનન્ય ભક્તિ ભાવ અર્થાત જિસકે જૈસા દૂસરા નહીં હૈ એસા ભક્તિપૂર્વક ઉત્કૃષ્ટ ભાવ ઇસકો અનન્ય ભક્તિ ભાવ કહેવામાં આવતા હૈ. સર્વોત્કૃષ્ટ ભક્તિ ભાવ, ઐક્ય ભાવ, પરાભક્તિ ભાવ, शराबक्ति को भी सर्वोत्कृष्ट भक्ति कह सकते हैं। सर्वोत्कृष्ट का दूसरा अर्थ ही परा परा लिया है, और ऐ के मैंने जिसमें कोई अंतर नहीं है उसको ऐ के कहते हैं, या अन्य पड़ा नहीं रहे इसको भी अनन्य कहते हैं। दो में अन्य पड़ा रहता है, एक में एक के भाव में अन्य पड़ा नहीं रहता उसको भी अनन्य भक्ति भाव कहते हैं। मुमुक्षु वैद्यनाथ के योग मार्ग के मुमुक्षु वैद्यनाथ योग मार्ग के अच्छे परिचय वाले हैं ऐसा जानता हूं, तो मुमुक्षु अन्य मत के जो है उनकी चर्चा करते हैं। सद्वृत्ति वाले योग्य जीव है, जिस पद का आपने साक्षात्कार पूछा वह अभी उन्हें नहीं हुआ है, मैंने आत्म साक्षात्कार उसको हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा पूछा तो उसको नहीं हुआ है, ठीक है। योग मार्ग के अच्छे परिचय वाले हैं, सद्वृत्ति वाले भी है, लेकिन आत्म साक्षात्कार उसको नहीं हुआ है। योग मार्ग में क्या होता है, योग मार्ग में ज्ञान की योग की जो क्रिया है उसमें मानसिक शांति सामान्य मनुष्य को भी आसानी से उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है, और यही परिस्थिति इसको भ्रांति में पड़ने का ज्यादा कारण है। पिछले टाइम हम बिरला लिखा है ना, तीन दिन ठहरे घाटकोपर में, घाटकोपर में ऐसे एक व्यक्ति के साथ मिलना हुआ, तो योग मार्ग के अभ्यास और योग मार्ग से सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें, कृपालु देव के ग्रंथ का भी अच्छा अभ्यास था, और कृपालु देव के वचनामृत में भी जो जहां जहां कोई बात ऐसी आवे तो वो अपने अर्थघटन में घटा लेते थे, जबकि वहां ऐसी बात नहीं अपेक्षा नहीं थी, फिर भी तो वो उस बार वो योग मार्ग में ढले हुए थे। और इनके जो अनुयायी लोग थे उसमें से वो हीरा बहन आई थी ना, इसकी एक परिचित बहन थी वो आई थी, तो लेकिन मैं 7 साल से योग मार्ग की साधना करता हूँ, ये मेरे गुरु हैं, मुझे आपको इसके पास ले जाना है, और अब मैं दूसरे को भी योग मार्ग का ज्ञान करा सकती हूँ, मुझे भी आत्मशांति बहुत है, हम आत्मशांति मानते बहुत है, और तो साक्षात्कार हो गया है, हमारे गुरु को भी हो गया है, ऐसा है वैसा बात से तो आत्म साक्षात्कार हो गया है, तो फिर आप हमसे क्या चाहते हो, लेकिन इस विषय में थोड़ा पूछना है, तो इनको जो पूछने का प्रश्न था तो हमने तो सीधा पकड़ा कि आपको शंका है, इस विषय में आपको तो शंका है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो निशंक हो जाता है, जैसे आप पूछते हो तो आप शंका में पड़े हो, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो बात तो सही है, हमको जानना था हम सही है या हम सही नहीं है, सही है या नहीं है ये बात ही बताते हैं कि आप सही नहीं है। फिर इसका क्या प्रोसेस है, हम तो योग मार्ग में लगे हुए इस तरह से बहुत शांति रहती है, वो है सांसारिक जीवन में भी हमारी इच्छाएं संबंध पड़ गई है, ऐसे है मतलब छोटी उम्र की मैरिड लेडी थी, फिर वो 7 साल से तो हम रपचर में अच्छी तरह से रह सकते हैं, वैसा है वैसा है, बहुत बात तो ठीक है, लेकिन आत्म साक्षात्कार की बात अलग होती है, वो बात कोई दूसरी होती है, तो इसके लिए ऐसा प्रोसेस है। और कृपा हुए तो उनको रचनामृत को जब आप स्वीकार करते हो तो देखो क्या क्या बात लिखी है, सिर्फ 2-5 बात भी पॉइंट आउट किया तो उसको लगा कि बात तो कोई अलग है, मैंने कहा अच्छा तुम्हारी जिज्ञासा रही तो बच गई हो, वरना बचना मुश्किल है, इसमें उतने फिट हो जाते हैं, इसको गुरु को भी मिले हम तो लगा कि ये तो छूट सकते हैं, वो गुरु नहीं छूटेगा, वो तो गुरु बन के बैठ गया तो वो नहीं छूट सकता है, तो जिज्ञासा में रहता है, मध्यस्थता में आता है, सरलता में रहता है, वो छूट सकता है,
होता है और उस नुकसान से कैसे बचा
जाए। वो भी चर्चा चली थी, हमने वो भी प्रश्न निकाला था। तो मानसिक शांति और आत्म शांति में क्या तफावत है वो आपको समझना जरूरी है। आत्म शांति तो विज्ञान के प्रयोग के बाद पैदा होती है, निर्विकल दशा में। विज्ञान करते करते फिर निर्विकल दशा होती है, तो उसमें मानसिक शांति वाला जो मंद कषाय का कण है उससे भी विज्ञान होता है, तब आत्मिक शांति आती है। और मानसिक शांति को जो आत्म शांति मान लेते हैं उसको विज्ञान तो होता नहीं, और मानसिक शांति जो कषाय कण है उसको ही वो चिपकता है, उसको ही वो पकड़ता है और उसमें आत्म शांति मान लेता है। तो वहाँ तो मानसिक शांति में जो कषाय कण है उससे भिन्न होने का तो प्रकार ही नहीं रहा, तो विज्ञान का तो प्रोसेस ही वहाँ नहीं है। वहाँ तो आप जो दूसरे प्रयोग में चढ़े हो उस उपयोग को अचंचल करने के लिए या योग के ध्यान के प्रयोग में, तो वो तो मनोवचन काया के साथ आपका जो परिणाम है वो काम करता है। तो मनोवचन काया तो पुद्गल है, मन भी पुद्गल है, वचन भी पुद्गल है, काय भी पुद्गल है, और पुद्गल से भिन्नता करना है उतना ही नहीं, पुद्गल आश्रित परिणाम से भी भिन्नता करना है, यही वेद ज्ञान का स्वरूप है। तो वो प्रोसेस में तो आया नहीं, जो शांति हुई इसको आत्म शांति मान लेते हैं, तो उससे तो वेद ज्ञान करना है, तब तो आत्म शांति आएगी। ये लाइन थोड़ी अलग करती है, इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। मानसिक शांति है वो अशांति का ही एक स्वरूप है, जो मंद अशांति है, क्योंकि आत्मिक शांति एक बिल्कुल निराकुल परिस्थिति होती है जिसमें अशांति का अभाव है। अशांति का मंद होना एक बात है और अशांति का अभाव होना ये बिल्कुल दूसरी बात है। एक में अशांति का सद्भाव है, अस्तित्व है, दूसरे में अशांति का नास्तित्व है। इतना बड़ा अंतर है, अस्ति नास्ति का अंतर इतना बड़ा है कि जीवन मृत्यु का अंतर वो उतना अंतर है। मुर्दा वो भी शरीर है और जिंदा रहना वो भी शरीर से देखा जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसमें नहीं है तो रिएक्शन आएगा बड़ा है। और पता चलता है कि सोए हुए हैं, श्वासोश्वास चलता है तो अस्तित्व को नजर आता है, तो कोई उपाधि नहीं आती है, बहुत बड़ा अंतर है।
आत्मिक शांति जो होती है अनुभव के बाद होती है, आत्मिक शांति अनुभव के बाद होती है, तो मुमुक्षुता की भूमिका में ऐसा जो प्रतीति का क्या स्वरूप होता है जिससे ये चीज को विश्वास होता है कि वो आत्मिक शांति की ओर लेके ही जाए, उसमें शांति का क्या स्वरूप होता है
मुमुक्षुता? ये जो प्रोसेस है, जिस क्रम का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में चले तो आत्मिक शांति आएगी, क्योंकि तो आखिर में तो विभाव से विज्ञान करते 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 निर्विकल्प अनुभव में आएगा, तो उसको तो कहीं भ्रांति में पड़ने की जगह नहीं है, सही यथार्थ लाइन में आता है उसको। और जो यथार्थता में चलता है तो उनको मानसिक शांति में आत्म शांति का भ्रम हो जाता है, तो वहाँ वो पकड़ में आ जाता है, उसको नुकसान होता है, ग्रेट विख्यात में तुम्हारा आ गया।
कि उतना अशांति और आकुलता में आकर के भी जीव को ऐसी दृढ़ प्रतीति रहती है कि ये भी हमारे को पूर्ण शांति की ओर ले जाएगा, हमारा प्रयास वो सही है।
उनको क्या है कि परिभ्रमण से छूटना है, तो सुविचारणा में जो आकुलता आई वो परिभ्रमण छूटने के कारण से आई है, परिभ्रमण छूटने के हेतु से अशांति खड़ी हुई है, संसार के प्रयोजन से अशांति खड़ी नहीं हुई है, वो अंतर है उसमें। उसका सब्जेक्ट जो है वो अलग है, तो उसमें तो वैराग्य आ गया, तो वो आकुलता वास्तव में जो संसारिक आकुलता है उस जाति की नहीं है, उसका जाति का भेद है, उससे भी उसको पता चलता है, वो बात नहीं है। लोग जिस संसार के पदार्थ के पीछे तड़पते हैं वो मेरी बात नहीं है, मेरी बात तो दूसरी है, मैं मेरी शांति के लिए तड़पता हूँ। तो शांति के लिए जो तड़पन वाली अशांति है वो शांति को ले आएगी, वो उसका प्रतिष्ठा में आता है, उसको विश्वास का कारण नहीं है। इसमें क्या है कि कषाय की मंदता वो चारित्र मोह में जाता है और दर्शन मोह की मंदता वो मिथ्यात को गालने वाली चीज है। तो दो का डिफरेंस अगर नहीं जो समझता है वो कषाय की मंदता में फंसता है। इसलिए ये कहने में आता है शुरू से ही हमारा प्रारंभ इस सिद्धांत से होता है कि मोक्ष मार्ग में पुण्य पाप की गिनती मत करो, क्योंकि मोक्ष मार्ग पुण्य पाप से परे की चीज है। इसलिए कोई मोक्ष मार्गी आत्मार्थ से ऐसा नहीं सोचेगा कि हम भव भ्रमण करते करते स्वर्ग का भव करते करते मोक्ष में जाए तो ठीक है, नर्क में हमें नहीं जाना है क्योंकि वहां प्रतिकूलताएं हैं, ये पाप का फल है ये पुण्य का फल है। आत्मार्थ से तो वो सोचेगा कि पाप का फल पुण्य का फल के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, हमको तो हर हालत में हमारा मोक्ष मार्ग में जाने का अभिप्राय है। तो पूर्व कर्म का उदय पाप का भी आएगा, उनको हर एक को आता है, इनको भी आएगा और पुण्य का भी आएगा। तो दोनों में ये अच्छा ये बुरा वो बात नहीं लेगा, तेरे पुण्य का उदय आया तो अच्छा है हम आत्म साधना ठीक कर पाएंगे, अगर पाप का उदय आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे, वो बात उनके लिए नहीं होती। तो उनकी लाइन वहां से डिफर हो जाती है कि हमें को हमको कषाय की तीव्रता मंदता से कोई लेना देना नहीं, हमको तो अज्ञान मिथ्यात्व टालना है। भव भ्रमण तो इससे मिटेगा कि अज्ञान मिथ्यात्व मिटने से भव भ्रमण मिटेगा, इसलिए वो उस लाइन पर जाता है, वो दर्शन मोह की मंदता की लाइन पर चढ़ता है जबकि दूसरे कषाय की मंदता की लाइन पर चढ़ता है। बस यही अंतर है, जो अंतर है वहां से अंतर पर कषाय रस तो ऐसा ही ऐसा रहता है भरा हुआ दबा हुआ रहता है और कषाय ऊपर ऊपर से मंद होता है, अंदर में तो उतना ही भरा रहता है। उनका रिलेशन है दर्शन हो के मंदता के साथ, इसलिए कषाय मंद करना नहीं है, कषाय रस मंद करना है या दर्शन हो मंद करना है। और वो मुमुक्षु वैद्यनाथ को कृपालु देव मिले नहीं है लेकिन वो उसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है वो जानते हैं। देखो ज्ञान कितना 24 साल की उम्र में परिपक्व है, पूर्व काल में उत्तर दिशा में विचरने के बारे में उनसे उनके मुख से श्रवण किया है तो उस बारे में अभी तो कुछ लिखा नहीं जा सकता, परंतु इतना बता सकता हूँ कि उन्होंने आपसे मिथ्या नहीं कहा है। उत्तर दिशा में मैंने उत्तर हिंदुस्तान में यूपी में राजस्थान यूपी मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश तो थोड़ा बीच में है लेकिन तो राजस्थान का ऊपर वाला भाग और ये यूपी का भाग है उत्तर प्रदेश का भाग है, वहाँ दिगंबर जैन का प्रभाव ज़्यादा है। तो उसके बारे में उसके मुख से श्रवण किया है कि वहाँ वहाँ धर्म की प्रभावना वहाँ अच्छी हो सकती है, तो उसके बारे में मैं अभी कुछ लिख नहीं सकता हूँ लेकिन इतना बता सकता हूँ उन्होंने जो किया है वो सही कहा है, मिथ्या नहीं की कहा है। और आगे भी एक पत्र में उन्होंने लिखा है कि इस देह का जन्म काठियावाड़ में सौराष्ट्र में हुआ है, अगर गंगा यमुना के बीच वाले प्रदेश, मैंने उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना तो उत्तर प्रदेश में से चली है, गंगा इधर बंगाल में आई, यमुना आगे जाकर के मिलती है गंगा को, लेकिन दो बीच का प्रदेश है यूपी है, अगर इस देह का जन्म वहां हुआ होता तो इस जन्म के प्रभाव में बहुत होती है, वो लिखा है वो लिखा है। तो बात सही है, हमको भी याद लगता है तो वहां बहुत चांस है धर्म प्रभावना का, चांस यूपी मध्य प्रदेश में जितना है اتنا ہندوستان میں اس دھرنے کے لیے کوئی انوکول پرستھتی نہیں ہے. وہاں ستانگر کی وسطی بھی کم ہے. دیہرادون ہم گئے تو وہاں سادھیا کرتے تھے مندر جی میں, ہم پوچھا کہ یہاں کتنے مندر ہیں, تو تین مندر ہیں تینوں دگمبر ہے, تو یہاں ستمبر ہے ہی نہیں, جین میں نے دگمبر, جین میں نے ستمبر وہ نہیں سمجھتے, سہارنپور دیہرادون سب دگمبر ہی دگمبر ہیں. وہاں جتنے بھی جین تو ان لوگوں کے لیے بہت آسان ہے, کیونکہ ان لوگوں کو نشیدانے کا سوال نہیں ہے, جو بھی بات آئے گی اس میں ہم اپنے آچاریوں میں اتنے گرنتھوں میں ان کو وشواس ہے, تو وشواس دلانے کی بات نہیں ہے, دوسرے کو تو وشواس دلانا پڑتا ہے کہ خود خود آچاریہ ہیں وہ صحیح کہتے ہیں, ان کو تو وہ بات ہی نہیں ہے, خود آچاریہ وہ غلط کہ وہ بات ہے, ان کو وکلپ ہی نہیں آئے گا, اس کو سوال ہی نہیں. ہم جو ہے وہ مہتو پورن پیراگراف پتر کا, جس کے وچن بل سے جیو نروان مارگ کو پاتا ہے, ایسی سجیون مردی کا یوگ پورو کال میں جیو کو بہت بار ہو گیا ہے. گیانی نہیں ملے ہیں, ستپرش نہیں ملے ہیں, سو بات نہیں ہے, بہت بار ملے ہیں کہ جس کے وچن بل سے جیو نروان مارگ کو پاتا ہے, ایسا اچھے سے اچھا یوگ ملا ہے, پرنتو اس کی پہچان نہیں ہوئی ہے. جو کہیں کمی رہ گئی ہے تو اس بات کی رہی ہے کہ پہچان نہیں ہوئی ہے, پہچان ہوتی تو بات دوسری ہو جاتی, پہچان نہیں ہوئی تو بات دوسری رہ گئی. ایک پہچان ہونے سے ہی وہ جیو نروان پد کا ادھیکاری ہو جاتا ہے, یعنی ستپرش کی پہچان یہ نروان پد کا آرکشن ہے, ریزرویشن ہے, ایسا کہہ دے تو چلے, چیت پد کا ریزرویشن یہاں پڑا ہے, ستپرش کی گیان کی پہچان تو یہ سارا جو پیراگراف ہے وہ اس طرح کہ جس کو پہچان ہوتی ہے اس کو کیا ہوتا ہے, یا اس کو کیا ہو جاتا ہے, ہوتا ہے مطلب ہو جاتا ہے, اس پر سے پورا پیراگراف اچھا ہے. پرنتو اس کی پہچان نہیں ہے, جیو نے پہچان کرنے کا پریتن اچت کیا بھی ہوگا, بہو بھاگ تو جیو بھوگ سنگیا میں چلتے ہیں پہچان کرنے کا پریتن نہیں کرتے ہیں, کوئی جیو ایسا کبھی ہے کہ کبھی پہچان کرنے کا پریاس بھی کرتا ہے, وہاں تک آگے بڑھتا ہے, تتھاپی جیو میں جڑ جمائی ہوئی, جڑ میں نے موڑیا, موڑ میں شو, موڑ شو جامیلا ہے, کئی جاتنا موڑ جامیلا ہے جیو میں, جمائی ہوئی سدھی یوگ آدی ردھی یوگ آدی اور دوسری ویسی کامناؤں سے جیو کی اپنی درشٹی ملین تھی. ایسے مہاتما پروش ملتے ہیں تو اس کے سنیوگ سے ہم کو انوکولتائیں ہو جائے گی, پرتیکولتائیں ہٹ جائے گی, یا کوئی چمتکار وہ جانتے ہیں, چمتکارک ہوتے ہیں, وچن سدھی والے ہوتے ہیں, جو بولتے ہیں ویسا ہو جاتے ہیں, اس پرکار کے بھوتک پدارتھوں کی کامنا اور اچھا جیو کو رہ گئی ہے. यदि दृष्टि मलिन हो तो वो मलिन दृष्टि है, यदि दृष्टि मलिन हो तो वैसी सतमूर्ति के प्रति भी बाह्य लक्ष्य रहता है, तो बाह्य लक्ष्य रहता है क्या कि उसके अंतर्प्रति पर लक्ष्य नहीं जाता है, वो तो बाहर में क्या क्या करते हैं, कैसे भक्ति कराते हैं, कैसे शास्त्र स्वाध्याय कराते हैं, कैसे कितने कितने त्याग हैं इसके जीवन में, کیا کیا ان کا پربھاؤ باہر میں کتنا ہے, پہلے جو باہر کے جتنے بھی چنہ ہیں تیاگ کے, وانی کے, رہن سہن کے, جو بھی ہیں پرسنالٹی بھائی ویکتتو جس کو کہتے ہیں, وہ سب پرکار لکھنے میں آتا ہے, اس سے جو پربھاوت رہتا ہے वो भी वही कारण से होता है, बाह्य दृष्टि उसी कारण से है कि अपने जो बाह्य पदार्थ के प्रति आसक्ति है, सुख बुद्धि है, आधार बुद्धि है, उसी कारण से ऐसे सतमूर्ति के योग में भी वो बाह्य दृष्टि वाला दृष्टिकोण छूटता नहीं है, चालू रहता है,
जिससे पहचान नहीं हो पाती।
तो पहचान करने वाले को ये बाह्य लक्ष्य जो है इसको छोड़ करके, उसको बाध करके पहचान के क्षेत्र में अपना उपयोग लगाना है। और जब पहचान होती है तो, जब पहचान होती है तब जीव को कोई ऐसा अपूर्व स्नेह आता है, अपूर्व स्नेह को अपूर्व प्रेम कहो, 394 में कहा अपूर्व प्रेम और अचल प्रतीति। प्रतीति मैंने पहचान से उत्पन्न हुई प्रतीति अचल होती है, वो तो किसी प्रसंग में विचलित नहीं होती, इसलिए उसको अचल प्रतीति कहते हैं। तो अपूर्व स्नेह अपूर्व प्रेम आता है जिससे कि उस मूर्ति के वियोग में, क्या अपूर्व स्नेह आता है कि उस मूर्ति के वियोग में एक घड़ी भर भी जीना उसे विडंबना रूप लगता है, एक घड़ी भी उसको वियोग में रहना एक बहुत बड़ी विडंबना उसको लग जाती है, बर्दाश्त नहीं होता। अर्थात उसके वियोग में यदि रहना पड़ता है तो, क्योंकि बाहर की परिस्थिति पूर्वकर्माधीन होती है, चाहे लाख चाहे तो भी उसमें अंतराय आता ही रहता है, और ये जीव का खुद का स्वयं का भूतकाल का अपराध उसमें कारण है, और कोई कारण नहीं है दूसरा। उसके वियोग में वह उदासीन भाव से उसी में वृत्ति रख कर जीता है, वियोग का काल में भी उनके जो हृदय है उसमें उदासीनता प्राप्त हो जाती है, और इसकी वृत्ति एक ही जगह रहती है, जो सतवृत्ति का मुझे योग हुआ है उसमें उसकी वृत्ति रहा करती है। अन्य पदार्थों का संयोग और मृत्यु ये दोनों समान हो गए होते हैं, वरना संसार में क्या है कि अच्छे अच्छे पदार्थ का संयोग होता है तो सुखमय जीवन लगता है, और मृत्यु और मृत्यु के कारणभूत प्रसंग आता है तो दुखमय लगता है, उनको दोनों समान है। अगर कोई पदार्थ अच्छे अच्छे संयोग हुए तो क्या है, हमें क्या इसमें से लेना है, क्या इसमें से हमें सुख थोड़े लेना है कि नहीं, मृत्यु आ जाए तो ठीक है, वो भी ठीक है, क्योंकि हमको तो जो संयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो मृत्यु आए तो भी हम तो उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि हमारे इसके बिना जीवन वो जीवन नहीं है, तो वो तो दोनों समान है। इसके अन्य पदार्थों का संयोग और मृत्यु ये दोनों उसे समान हो गए होते हैं, समान हो गए होते हैं। ऐसी दशा जब आती है, ऐसी दशा जब आती है तब जीव को मार्ग बहुत निकट होता है, ऐसा समझे। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी दशा जब नहीं आती है तो मार्ग निकट नहीं है, ऐसा समझे। दोनों बात साथ में अस्ति नास्ति का ले लेना है। ऐसी दशा आने में, हमें ऐसी दशा क्यों नहीं आती है वो बात भी लिख दी है कि ऐसी दशा आने में माया की संगति बहुत विटमिनामय है, यानी कि ऐसी दशा नहीं आने में जीव को माया की संगति है। माया की संगति मैंने क्या कि अन्य पदार्थ के प्रति उसका स्नेह ज्यादा है, या तो स्नेह सत्पुरुष के प्रति रहे या तो स्नेह बाकी के पदार्थ के प्रति रहे जो उनके पदार्थ के अधीन संयोग रूप होते हैं, उसमें उसका स्नेह रहता है, उसमें उसका प्रेम रहता है, वो बात चल जाता है। परंतु यही दशा लाने का जिसका दृढ़ निश्चय है, क्या कि यही दशा हमको लानी चाहिए, उसका जो दृढ़ निश्चय जिसको है उसे प्राय अल्प समय में यह दशा प्राप्त होगी, इसका रास्ता भी बता दिया।
पत्र लिखा तो उसकी जानकारी मुझे ऐसी दशा आनी चाहिए। तो ऐसी दशा लाने का जिसका दृढ़ निश्चय है कि हमको इस दिशा में आना ही है, अगर इस दिशा में हम नहीं आएंगे तो मार्ग की प्राप्ति होना विकट है और इसी दशा वाले को ही निकट है, तो उसका जिसको दृढ़ निश्चय हो गया है उसको आसानी से वो दिशा प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी ऐसी बातें वो सत्पुरुष होकर के लिखते थे, उसमें थोड़ी खुद को भी तकलीफ हो गई क्योंकि सज्जन मूर्ति के प्रति क्या क्या होना चाहिए, कैसी भक्ति होना चाहिए, कैसा प्रेम होना चाहिए, कितनी मेहनत आनी चाहिए, वो भगवान को भी गौण करता है। कल वो प्रश्न निकाला नहीं वो दिगंबर को थोड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते, अरे भगवान मूर्ति को गौण करके सत्पुरुष को गृहस्थ को मुझसे करे तो बहुत बड़ा तकलीफ हो जाए, ऐसी बात है। तो ऐसी ऐसी बातें 213 में तो लिखी भी हुई है। तो ना भी दे सकते नहीं, हाँ भी दे सकते नहीं, तब करे क्या? ना देने से उनकी भावना को ठेस पहुंचती है, हाँ करने से हम खुद बंधन में आते हैं, तब क्या करें? हम तो सुनता नहीं, क्या करें? सजीवन मूर्ति से मार्ग मिलता है ऐसा उपदेश करते हुए हमने स्वयं अपने आप को बंधन में डाल दिया है। ऐसा उपदेश हमने आपकी भलाई के लिए कर किया, लेकिन हमको तो दिक्कत हो गई है, हमको बंधन में अपने आप को डाल दिया है। कि जिस उपदेश का लक्ष्य आप लोगों ने हमको ही बना बैठे हैं, फिर आप तो सत्पुरुष है, हम फिर आपको कैसे छोड़ेंगे? पकड़ के रखो, जाने ही मत दो। ये बात बन जाएगी। हम तो फिर कहते हैं कि देखो आप हमको मत मानिए सजीवन मूर्ति, हम तो ऐसे उस सजीवन मूर्ति के दास है, चरण रज है, हमको बंधन मत करिए, हम ऐसे नहीं, हमारी ऐसी अलौकिक दशा भी कहाँ है? वो तो क्या है कि जो मुनिराज होते हैं उनको अपने ध्यान में लेते हैं, तो हमारी ऐसी अलौकिक दशा कहाँ है कि ध्रुव क्षेत्र काल भाव का जिसको प्रतिबंध नहीं हो गए और प्रतिबंध विहारी हो गए, हम तो बंधन में आ जाते हैं। अरे आपका राग है, आपकी भावना है, तो हम बंधन में आ जाते हैं। तो मुनियों को बंधन नहीं होता, मुनि का विहार ऐसे लिया है दिगंबर शास्त्रों में कि एक तो जंगल में रहते हैं, बस्ती में रहते नहीं। जंगल में जब रहते हैं तो नजदीक के जो जिस वन उपन में वो ठहरते हैं, नजदीक के जो गांव है, शहर है, नगर है, वहां से लोग आते हैं, पता चल गया कि वहां मुनिराज विराजमान है तो वो वहां आ जाते हैं। धर्मलोभी जीव आते हैं, कैसे लोग आते हैं? क्योंकि वहां तो इंटेंशनली आना पड़ता है, इरादा से कुछ तकलीफ पा करके वहां आना पड़ता है। ऐसा नहीं कोई घर में नजदीक है तो चलो अपने व्याख्यान सुन लिया, दूर है तो नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। वो तो दूर कहीं भी हो जाएंगे, वो तो जाएंगे ही, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। तो धर्मलोभी जीवों को धर्म मिलता रहे इसलिए यहाँ ज्यादा ठहरना वो दिगंबर मुनि को नहीं। दूसरे जीवों की तो वो अनुकूलता देते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता तो उसको है नहीं, क्योंकि उसको तो तिल तुष मात्र परिग्रह होता ही नहीं, इसलिए कोई चीज जिसके अनुकूलता को मिल जाए या प्रतिकूलता रह जाए वो बात उनको होती नहीं। फिर भी धर्मलोभी जीवों का अनुराग से भी वो वहां ठहरते नहीं, उतना बंधन भी वो नहीं स्वीकारते, तो उनको ख्याल में रख करके बोलते हैं कि हम तो हमारी ऐसी अलौकिक दशा भी कहाँ है कि जिस दशा में केवल असंगता ही रहती है वो तो केवल असंग मुनिराज होते हैं, केवल जो असंग होते हैं वो मुनिराज होते हैं, एकदम असंग दशा में रहते हैं और किसी भी ध्रुव क्षेत्र काल भाव का उनको लगाव नहीं रहता है। कहीं भी स्मशान में ध्यान करो या जंगल में ध्यान करो, कहीं भी ध्यान करो,
नगर के समीप हो, नगर के दूर, एक सी परिस्थिति।
हम लोग तो छल पकड़ करके तो बैठे ही रहते हैं कि हमारे आपको अपने सारे परिणाम को सतपुरुष के सामने नहीं खोलना चाहिए, ये तो उनका विकल्प बन जाएगा। कि हम लोग कोई भी अपना परिणाम को रखेंगे सामने तो अननेसेसरी विकल्प बढ़ेगा ही ना, जो सिर्फ प्रयोजन को तुमको लगता है कि वो अच्छी अच्छी बातों को रखना चाहिए। संसार के हर छोटे मोटे प्रसंग को क्या रखे सामने में, अननेसेसरी विकल्प बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के क्षण में तो हम खड़े हैं, और फिर ऊपर से अगर ये बात आ जाता है कि सतपुरुष का हम ज्यादा वो करते हैं तो वो बंधन में आ जाते हैं, हम तो और पकड़ के बैठ जाएंगे इस बात को कि जब उनको तो बंधन रूप लगता है तो उनको ज्यादा कोई काम करना नहीं चाहिए कि उनको वो बंधन रूप लगे। तो क्षण में खड़े हम लोग तो और पकड़ के बैठ जाएंगे, हम लोग उससे मुक्त कैसे हो। तो इसमें एक तरफ तो एक के बाद भाव वाला बात रहता है, फिर एक तरफ वो रहता है, तो हम लोग कैसे सामंजस्य बैठे हैं लोगों का।
देखिए, परिणाम को कृत्रिमता से करना है या सहज होता है, जिसमें करने का नहीं करने का सवाल नहीं होता है, ये परिस्थिति को पसंद करते हैं। मेरा ये सवाल है, इस प्रश्न के सामने मेरा एक प्रश्न है।
सहज तो होना चाहिए, पर जब तक एकमात्र करने का लक्ष्य नहीं होता है, जब तक एकमात्र ये करना इसका लक्ष्य नहीं होता है, तब तक तो सहज वाला जो बात रहता है वो तो रहता नहीं।
फिर विचार तो वो करना है, कुछ भी स्थिति हो, आप उसको पर आपको विचार करना है, आपके परिणाम पर आपको विचार करना है। हमारा ये प्रश्न है कि आपको कृत्रिम परिणाम होना चाहिए या सहज होना चाहिए। ठीक है, तो आप सहजता की लाइन पकड़ो। ये जो प्रश्न है वो तो कृत्रिमता को ले आने वाला है,
बुद्धि का एप्लीकेशन आ गया।
जो आपका जो प्रश्न है वो तो तुम्हारा प्रश्न तो बुद्धि कृत्रिमता को ले आने वाला है, इसलिए हमने ये प्रश्न उठाया। किस तरह से काम करना चाहते हो, सहजता से या कृत्रिमता से करना है? सहजता से तो उसी लाइन को पकड़ो।
बुद्धि का एप्लीकेशन नहीं
करना, मतलब क्या हुआ कि अगर पहचान आएगी तो परिणाम जो परिस्थिति बताई ऐसे हो ही जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, ये परिस्थिति बन जाएगी, हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। अगर पहचान नहीं हो और सुने सुनाई बात पर अगर हम कृत्रिमता करने जाएंगे भक्ति भाव के, तो अगले को बंधन भी होगा तो हमारा ठिकाना रहेगा, उनको कोई लाभ नहीं होगा। तो ये जो मार्ग है ना वो तो एकदम नेचुरल पोजिशन वालों का है, अननेचुरल नहीं।
कर ही लेते ना कि ऐसा इंस्टेंस आएगा तो हमको ऐसा रिएक्ट करना, वैसा इंस्टेंस आएगा तो हमको वैसा
रिएक्ट करना। ऐसे तो सबको जो होता है कृत्रिमता भी सहज होती है, लेकिन वो पसंद करने योग्य नहीं है, नहीं होनी चाहिए,
इसका भी खेद होना चाहिए।
हाँ, इसका भी खेद होना
चाहिए। और उसका भी
खेद होना, कृत्रिमता होती है वो तो मायाचार के परिणाम है, नुकसान करता है, तो ये होना नहीं चाहिए। लेकिन जिसकी प्रकृति या योग्यता ऐसी है तो वो सहज कृत्रिमता या मायाचार कर बैठता है तो सहज होता है वो, लेकिन वो अच्छा नहीं है,
नुकसानकारक।
खेद जो होता है उस खेद का भी खेद हो गया तो क्या
नहीं,
हो गया, हमने हमारा सुधार कितना हुआ,
मतलब खेद भी होता है और उस खेद का भी खेद होता है,
होना चाहिए। अकेले खेद करके क्या करेंगे, अकेले खेद में बैठा रहने से काम थोड़ा होगा, जो लाइन गड़बड़ वाली हो गई उसको तो उनको गड़बड़ कितनी होगी उसका क्या ठिकाना, उसका तो कोई ठिकाना।
उस गड़बड़ से बचने के लिए यही है कि हमारा परिणाम बहुत सहज होना चाहिए कोई भी इंस्टेंस
पे। हाँ, ये सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़े,
सरलता को लेकर
हम, हाँ, इस सिद्धांत को लेकर के आगे बढ़े, कि हमें हमारे परिणाम में सहज परिणाम से आगे बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है, सिद्धांत ये करते हैं चले तो फिर हम बुनेंगे नहीं।
इसी मुमुक्षु को तो ये तो है कि सहज परिणाम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मुमुक्षु को तो पता तो लग ही जाता है कि सहज परिणाम हो रहा है या नहीं हो रहा है।
पर क्यों नहीं पकड़ना है, पकड़ सकता है,
पकड़ सकता है तो फिर सहज परिणाम ही करना चाहिए।
हाँ ठीक है,
क्यों करें,
ठीक है ऐसा ही करना चाहिए, परिणाम तो सहज ही होना चाहिए। આજે મોક્ષ માર્ગ છે આખો સહજ છે, એપ્રોચ ઓફ ધી મોક્ષ માર્ગ વો ભી સહજ, દોનો સહજ પરિણામ હૈ, પર કૃત્રિમતા હૈ વો ઇસસે બિલકુલ વિસંગત હૈ, સુસંગત નહીં હૈ, તો એસા જાન કરકે કૃત્રિમતા કો છોડ કરકે સહજતા મેં આના ચાહિએ, ઓર એ સિદ્ધાંત કો લેકર કે આગે બઢના ચાહિએ।
तो
मैं ऐसा लेते थे कि मन वचन
काया की
एकरूपता होनी चाहिए, वरना हम लोगों के क्या रहता, मन में कुछ रहता, वचन में कुछ
आता है, हम लोग करते कुछ, मतलब बाहर सरलता प्रदर्शित करने के लिए भी हम लोग असरलता कर
लेते हैं। सरलता के विषय में असरलता, फिर सरलता आएगी कहाँ से, सरलता कहाँ है, हमारी ऐसी अलौकिक दशा भी कहाँ है कि जिस दशा में केवल असंगता ही रहती है। हमारा उपाधि योग तो आप प्रत्यक्ष देख सके ऐसा है, हम तो बंधन में वैसे ही उपाधि के बंधन में है, जो आप प्रत्यक्ष देख सकते हो तो हमको तो छोड़ दीजिए। ऐसा हमको कहना है। ये अंतिम दो बातें तो हमने आप सबके लिए लिखी है, सब सबसे मैंने जो भी इनके मुमुक्षु थे उसको बारह कुछ लिखा, त्रिभुवन मणिकर्ण निकम्बाद वासी मुमुक्षु भाई हैं, अंगुली निर्देश है।
यहाँ पे मुझे अपना परिणमन लिख रहे हैं, इसमें ऐसा हुआ है कि जो ज्ञानियों का सनातन आचरण होता है कि गुप्त रह के व्रत करते हैं, तो अपने आप को गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए मुमुक्षु की भूमिका भी किस प्रकार का होती है,
उसको भी ऐसा ही होना चाहिए। मुमुक्षु भी अगर अपनी प्रसिद्धि चाहता है या अपना मान सम्मान चाहता है तो मुमुक्षु कहाँ का, अब तो ज्ञानी तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसके पहले अगर चाहता है तो मुमुक्षु की मुमुक्षुता ही नहीं रहेगी, उसकी मुमुक्षुता में तो गुप्त रहने का ही भाव आएगा, ठीक है हमको गुप्त ही रहना, प्रसिद्धि में आना वो तो एक ऐसी फिसलने की जगह है कि जहाँ से जीव फिसलता है तो उसका पतन हो जाता है, मुमुक्षुता से वो गिर जाता है। ज्ञानी भी नहीं चाहता है और जो ज्ञानी होने वाला है वो भी नहीं चाहता है, जब तो वो ज्ञानी बनेगा, ज्ञानी और चाहेगा मुमुक्षु और चाहेगा, डिफरेंट विरुद्ध चाहेगा,
कभी जैसे होता है कि अभिप्राय में नहीं भी होता है और फिर भी वो प्रसिद्ध हो जाता है,
तो
गुप्त रह के वर्तन करता है, सब कुछ करता है, फिर भी वो प्रसिद्ध कर हो
जाता है, हो सकता है ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि जैसे पाप का उदय जीव को नहीं छोड़ता है, ऐसे पुण्य का उदय भी जीव को नहीं छोड़ता है, चाहे ज्ञानी हो चाहे मुमुक्षु हो, उदय तो पूर्वकर्मा ही नहीं, तो बन सकता है, वो भी बनेगा तो बनेगा, इसमें चलता नहीं है जीव का, जैसे पाप का उदय में नहीं चलता ऐसे पुण्य का उदय में चलता नहीं है जीव का, ये समझ में रखना है, वरना तो करता आता हो जाएगा, जबरन कर परिस्थिति को बदलाने के परिणाम करेगा वो भी ठीक नहीं।
ज्ञानी की ओर पूजा के मन में मुमुक्षु को तो ख्याल रखना चाहिए, इतना ज्यादा है पर भी छोड़ना नहीं चाहिए, ज्ञानी के गौरव हो जाती है तो ज्ञानी छुटना चाहते हैं तभी मुमुक्षु को छोड़ना नहीं
चाहिए, क्योंकि ज्ञानी का परिणाम है, ज्ञानी अपनी
छोड़ना नहीं चाहिए, ये कृत्रिमता से या सहजता से सवाल उठना है हमारा। तो सहजता होती है तो वो तो परिणाम हो जाता है, करना नहीं पड़ता है तो हो जाता है, इसका क्या इलाज है?
पहले तो आए ये बात की एक समय भी गृह में रहना नहीं चाहता है,
उसको हो जाता है,
हो जाता है,
इससे हो जाता है तो हो जाता है।
अज्ञानी को भी किल का संवर्धन रूप लगता है और किल का संग असंग रूप लगता है। ज्ञानी को किल का संवर्धन रूप लगता है और किल का संग असंग रूप
लगता है। बात है जब कोई वो बात वाले मुमुक्षु भाइयों को जो लिखता है कि आप लोगों ने हमको बंधन कर रखा है, मेहरबानी करके हमको छोड़ो, जबकि सुभाग भाई को लिखता है कि हम आपके संग में रहना चाहता है और हम आपका सत्संग वही हमारी असंगता है, तो बात तो बदल जाती है। वहां नहीं कहते हैं क्योंकि वहां तो वो कहेंगे कि हर प्रकार के संग से हमको उदासीनता आती है, लेकिन एक आपके सत्संग में हम प्रतिबद्ध है, वहाँ हमारा वहाँ हमको बंधन नहीं लगता, वहाँ तो वो प्रतिबद्धता हमसे नहीं छूटेगी, हमसे वो नहीं छूट सकती, हम क्या करें? तो इनकी योग्यता ऐसी ही है, बात तो ओपन है कि हम उस लायक बन जाए, बात खत्म हो गई, किसी अगले को बंधन नहीं लगे, वहाँ गिनती नहीं रहेगी, कृत्रिमता में गिनती रहेगी, उनकी सुविधा क्या है, असुविधा क्या है, हम सुविधा में रखें, नहीं रहे तो भी रखें। अब जब एक के बाद में सुविधा असुविधा का क्या सवाल है?
एक तो होता है कि सुविधा सुविधा का देखना और एक होता है
पकड़
करना।
हाँ, वो अलग बात होगी,
नेचुरल नहीं है वो,
हाँ वो हाँ
पकड़ करना वो आर्टिफिशियलिटी है, और एक नेचुरल होना कि उनके सब अच्छे से अच्छा व्यवस्था होना वो एक अलग
बात है, वो एक सामान्य बात है, क्योंकि उसका कोई इतना महत्व नहीं होता है कि जिसमें कृत्रिमता हो जाए, इस प्रकार में शायद बताइए। ये अंतिम दो बातें तो हमने आप सबके लिए लिखी हैं, हमें अब कम बंधन हो ऐसा करने के लिए आप सबसे विनती है। दूसरी एक बात यह बतानी है कि आप हमारे लिए अब किसी से कुछ न कहें, यानी हमारी प्रसिद्धि मत करें, आप उदय काल जानते हैं, हमारा उदय तो आप जानते हैं, वो तो प्रसिद्धि के अनुकूल नहीं है, हम तो फंसे हुए हैं, 24 साल की उम्र है, 3 साल 4 साल पहले शादी हुई है, और वो बिजनेस में उतने फंसे हुए हैं, प्रसिद्धि में आकर के क्या करें? प्रसिद्धि में तो आने वाले को निवृत्ति चाहिए, तो निवृत्ति तो खुद को है नहीं, बहुत तकलीफ में बढ़ जाएगी। वास्तविकता तो यह है कि जिस काल में ज्ञान अज्ञान निवृत्त, ज्ञान से अज्ञान निवृत्त हुआ, नाश हुआ, निवृत्त हुआ मैंने नाश हुआ, उसी काल में ज्ञानी तो मुक्त है, प्रवृत्ति तो प्रारब्ध अनुसार करते हैं, लेकिन जिस काल में ज्ञान हुआ उसी काल से वो मुक्त हो गए हैं। देहादि में अप्रतिबद्ध है, सुख दुख हर्ष शोक में अप्रतिबद्ध है, ऐसे ज्ञानी को कोई आश्रय या अवलंबन नहीं है, आधार बुद्धि कहीं भी नहीं है, आश्रय भावना कहीं नहीं है, धीरज प्राप्त होने के लिए ईश्वर इच्छा आदि भावना होना योग्य नहीं है। भक्ति मान को तो कुछ प्राप्त होता है, उसमें कोई देश का प्रकार देखकर तटस्थ धीरज रहने के लिए वो भावना किसी प्रकार से योग्य है। ज्ञानी के लिए तो प्रारब्ध ईश्वर इच्छा सभी प्रकार एक ही भाव के, एक ही सरीके के भाव हैं, उसे साता असाता में कुछ किसी प्रकार से राग द्वेष आदि का कारण नहीं है, वो दोनों में उदासीन है, जो उदासीन वो मूल स्वरूप में निरालंबन है, उसकी निरालंबन उस उदासीनता को ईश्वर इच्छा से भी बलवान समझते हैं। कुछ पढ़ा था तो सत्संग में प्रतिबद्ध है, और जगह प्रतिबद्ध नहीं है, लेकिन सत्संग में प्रतिबद्ध है।
379 का कुछ
पंक्ति 379 में जिसकी प्राप्ति के बाद अनंतकाल की याचकता मिट कर सर्वकाल के लिए अयाचकता प्राप्त होती है, यानी दिन तक मिट जाती है जीव को। ऐसा जिसका वचन बल है या ऐसा जिसका योग होता है, ऐसा जो कोई हो तो उसे तरन तारण जानते हैं, उसे भजे। मोक्ष को इस काल में भी प्राप्त हो सकता है अथवा प्राप्त होता है मानव के, परंतु मुक्ति का दान देने वाले पुरुष की प्राप्ति परम दुर्लभ है, अर्थात मोक्ष दुर्लभ नहीं, मोक्ष के दाता दुर्लभ है। बहुत वजन है सबको उसके प्रति, बहुत वजन है। सुभग भाई को आपके सत्संग की अत्यंत रुचि रहती है, तथापि उस प्रसंग की प्राप्ति अभी तो निर्बल होकर ही श्री हरि को सौंपते हैं। आपके सत्संग की अत्यंत रुचि रहती है तथापि उस प्रसंग की प्राप्ति नहीं है, तो अभी तो हम निर्बल होकर के श्री हरि को सौंपते हैं कि आपका ड्यूटी है हमको सत्संग में सत्संग को मिला देना, आपका सत्संग हमको मिल जाए ऐसा कर देना, इसको काम सौंपा है कुदरत को, काम सौंपा है तो कुदरत अपने आप काम करेगी। सर्व प्रकार की उपाधि आदि व्याधि से मुक्त रूप से रहते हो ज्ञानी, सर्व प्रकार की उपाधि आदि व्याधि से मुक्त रूप से रहते हो तो भी सत्संग में रही हुई भक्ति दूर होना हमें दुष्कर प्रतीत होता है। तो सत्संग से ज्ञानी पुरुष भी दूर रहना कठिन लगता है, दुष्कर लगता है। सत्संग की सर्वोत्तम अपूर्वता, क्या संदर्भ लिखे हैं, सत्संग की सर्वोत्तम अपूर्वता हमें अहोरात्र रहा करती है। क्या दशा में 27 वर्ष तथापि उदय योग प्रारब्ध से ऐसा अंतराय रहता है, प्राय किसी बात का खेद हमारे आत्मा में उत्पन्न नहीं होता, तथापि सत्संग के अंतराय का खेद प्राय अहोरात्र रहा करता है। सत्संग पर कितना वजन है, सत्संग बिना के सर्व भूमि सर्व मनुष्य सर्व काम सर्व बातचीत आदि प्रसंग अपरिचित जैसे लगते हैं, एकदम पराये लगते हैं, उदासीन जैसे अरमणीय अमोहकर और रस रहित स्वभावस्थ लगते हैं, भाषित होते हैं। मात्र ज्ञानी पुरुष, मुमुक्षु पुरुष अथवा मुमुक्षु मैंने उच्च कोटि के स्वभाव स्वभाव पाई जैसे अथवा मार्गानुसारी पुरुष का सत्संग परिचित लगता है, अपना लगता है, प्रीतिकर लगता है, सुंदर आकर्षक और रस स्वरूप भाषित होता है। ऐसा होने से हमारा मन प्राय अप्रतिबद्धता का सेवन करते करते दूसरे संयोग से अप्रतिबद्धता का सेवन करते करते आप जैसे मार्ग इच्छावान पुरुषों में प्रतिबद्धता को प्राप्त हो जाता है, और जगह से अप्रतिबद्धता होकर के यहाँ हमारा चित्त भी 451 છેલ્લો પડી આ દિવલાની મેં એક વાત લીધો અને આ પેરેગ્રાફના આધારમાં એમણે સુયોગદાનનું એક સૂત્ર અને દ્વાદશાંગીનું અખંડ સૂત્રનો આધાર લીધો છે. આ સ્ટેટમેન્ટનો આધાર મૂળ સૂત્રમાંથી લીધો છે કે ભગવાને પણ મૂળ સૂત્રમાં આ વાત કરી છે.